ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम संग संख्या 10 अध्याय संख्या 4 श्लोक संख्या 26। एवं एतत् महान् भागा यथावदसि देहिनाम् अज्ञान प्रभवाहन्धिः स्वपरेति विदायतः। एवमेतन्महाभागा यथावदसि देहिनाम् अज्ञान प्रभवाहन्धिः स्वपरेति विदायतः। एवमेतन्महान् भागा यथावदसि देहिनाम् अज्ञान प्रभवाहन्धिः स्वपरेति विदायत। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ सल्लात और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की एवं, हाँ यह ठीक है, एतत् तुमने जो कहा है, महाभागा हे महापुरुष, यथा जिस तरह, वदसी तुम बोल रहे हो, देहिनाम जीवों के विषय में, अज्ञान प्रभवा अज्ञानवश, अहम धी यह मेरा स्वार्थ मिथ्या अहंकार है, स्वपरा इति यह दूसरे का स्वार्थ है, भिदा भेद यतः ऐसे देहात्म बुद्धि के कारण। हे महापुरुष कंस, केवल अज्ञान के प्रभाव के ही कारण मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता है। आपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा है वह सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति यह मेरा है या पराया है के रूप में भेदभाव बरतते हैं। तात्पर्य, भगवान के निर्देशानुसार कार्य करने वाली प्रकृति के नियमों के द्वारा यह कार्य स्वतः होता रहता है। स्वतंत्र रूप से किसी द्वारा कुछ किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि इस भौतिक वातावरण में रहने वाला व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अधीन है। अतएव हमारा मुख्य कारण यह होना चाहिए कि हम इस बद्ध जीवन से अपने को छुड़ाएं और आध्यात्मिक जगत में जाएं। मनुष्य केवल अज्ञानवश यह सोचता है कि मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, या फिर यदि अज्ञान और भी बढ़ जाता है तो वह अपने को ईश्वर मानने लगता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए बिना मनुष्य का तामसी जीवन चलता रहता है। हरे कृष्णा। तो इसमें कह रहे हैं कि हे महापुरुष कंस, केवल अज्ञान के प्रभाव के ही कारण मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता है। आपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा वह सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति यह मेरा है यह पराया है के रूप में भेदभाव बरतते हैं। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक वसुदेव जी कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? कंस को कह रहे हैं। कि कंस जो है वो बदल चुका है ना, बड़ा ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। इतने 6 बच्चों को मारने के बाद अब उसके अंदर थोड़ा सा पश्चाताप की भावना आ रही है, कुछ प्रायश्चित करना चाह रहे हैं। तो मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि कंस में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसे कह रहा है, वो देहात्म बुद्धि के बारे में कह रहा है, इतने अच्छे फिलॉसफी बतला रहे हैं, आत्मा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो इसका जो अभी उसके जीवन का जो टर्निंग पॉइंट था वो किस कारण हुआ? क्योंकि उसको साक्षात किसके दर्शन हुए? माता रानी के दर्शन हुए। माता रानी आई, अष्टभुजा के में आई, अस्त्र शस्त्र धारण करके आई। यह देख करके वो बड़ा अचंभित हो गया कि जो इतनी शक्तिशाली देवी है वो इनके पुत्री के रूप में प्रकट हुई है, तो ये कैसे हो सकता है? तो ये जो स्त्री है कोई साधारण स्त्री नहीं है, निश्चित रूप से ये भी शक्तिशाली। जब देवी माता इसके गर्भ में आ रही है ना, जब दुर्गा देवी ही आ रही है उनके पुत्री के रूप में, तो कोई साधारण स्त्री हो सकती है क्या? नहीं। तो जब उसने पावर को देखा तब जाके वो झुका, है ना। तो लोग नतमस्तक किसके समक्ष होते हैं? चमत्कार को नमस्कार। जब शक्ति का प्रदर्शन देखते हैं तब उसको नमस्कार करते हैं। जब तक आप शक्ति का प्रदर्शन नहीं करोगे तब तक आपको क्या समझते रहेंगे? ये ऐसी है, वह है, ऐसे समझते हैं ना। भक्तों के साथ भी कई बार ऐसा देखा जाता है। अभी वृंदावन में बहुत बड़ा राधानाथ महाराज का ग्रुप आया हुआ है, 7,000 लोग आए हुए हैं, और प्रतिदिन उनके लिए प्रसाद बनता है सुबह और सायंकाल को। तब समझे कितना उसमें सब्जी लगता होगा, कितना टमाटर लगता होगा, कितनी आलू लगती होगी। ट्रकों के ट्रक आते हैं उधर, सब्जियां आती हैं सारी, सब इधर से ही जाती है, आजादपुर से। तो जो सप्लायर्स है वो समझते हैं क्या ये तो भक्त लोग हैं, इनको थोड़ा कुछ कुंडी मार लो, क्या बोलते हैं उसको, वो मार लो तो भी क्या होगा, काम चल जाएगा, ऐसा वो सब परसेप्शन लगा के चलते हैं। क्विंटल के क्विंटल अगर आलू आ रहे हैं, टमाटर आ रहे हैं, तो 50 किलो या ऐसे कुछ मार लिया, डंडी मार लिया तो क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसा वो समझते हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया हुआ है, वहाँ पर अच्छे अच्छे लॉयर्स को बिठाया हुआ है ना, जो स्ट्रिक्टली उसको कस्टम डिपार्टमेंट वाले लॉयर्स इत्यादि हैं, जो एक एक ट्रक का जो भी आता है उसकी गिनती करते हैं कि इसमें कितना किलो आया, इसमें कितना क्या है, अगर थोड़ा भी फॉल्ट होगा वो केस कर देते हैं फट से। तो समझ गए बोलो कि भैया ये लोग भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कहने का मतलब है कि जो ऐसे आसुरिक मानसिकता के लोग होते हैं वो मीठी मीठी बातों से समझते हैं क्या? नहीं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जितने भी जानवर है, जितने भी पशु हैं, आप बोलो कुत्ते बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कुत्ता बैठेगा क्या? नहीं। यहाँ से चले जाओ चले जाओ चले जाएगा कुत्ता, क्या करना पड़ता है? डंडा उठाना पड़ता है, भागो यहाँ से भाग, ऐसे जब भी बोलते हैं तभी कुत्ता होता है या बंदर होता है। जो भी निम्न चेतना के लोग होते हैं वो डंडे की बात समझते हैं, मीठी मीठी बात नहीं समझते। इससे पहले देवकी माता, वसुदेव, ये सब खूब प्रार्थना, क्यों बच्चे को मार रहे हो, तुम्हारा ही तो बच्चा है, ऐसा है, ये जो लड़की आई है मैं तुम्हें इसके बहू बनाऊंगी, ऐसा ऐसा वो कह रही थी माता देवकी। कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे उसने देखा माता दुर्गा का तलवार देखा, चक्र देखा, और तब वो झुक गया कि इनके सामने हमें झुकना है। लेकिन ये जो परिवर्तन है ये भी ज्यादा समय तक नहीं रहा, ये भी आप देखेंगे कि थोड़े समय के बाद ही इसका फिर चेंज हो गया, मन फिर बदल गया कि नहीं। फिर से वो जितने भी बच्चे थे ब्रज के अंदर सभी को वो मारने का पूरी प्लानिंग करने लगा। फिर ये इतना अच्छा चेंज आया, फिर ये कैसे बदल गया? फिर बदल गया असुरों की संगति से। उसके जितने भी मंत्रीगण थे वो सारे के सारे क्या थे? आसुरिक मानसिकता के थे। तो जब उनका संग किया, सत्संग किया, तो फिर से उसके अंदर को विचार आने लगे। तो इसी प्रकार से अगर हम अच्छा संग करते हैं तो अच्छे संग से हमारी भावनाएं बदलती हैं, हमारे अंदर की जो कमियां हैं, हमारे जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं वो ठीक होते हैं, और गलत संग करते हैं तो फिर गलत कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आप देखेंगे अभी के समय में इतना ज़्यादा पापमय गतिविधियाँ हो रही हैं, गलत कार्य हो रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है? असत्संग। असत्संग के कारण ही व्यक्ति के अंदर अज्ञानता का प्रभाव होता है, और जैसे ही वह अज्ञानता के प्रभाव में आता है वैसे ही वो गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है। तो अगर कोई गलत कार्यों में लिप्त है तो उसके जड़ पे जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको बहुत बोल रहे हैं, आप उसके जड़ में जाए। किसकी गलत करने के पीछे इसकी क्या अज्ञानता है, तो उसकी अज्ञानता को समाप्त करते ही उसके गलत कार्य भी ठीक हो जाते हैं। सिर्फ गलत कार्य को ही कंडेम करेंगे, तूने ऐसा किया, वो क्या गलत किया, वो क्या, बेचारे डिप्रेशन में चला जाता है। तो बीइंग उसको करेक्ट करने से अच्छा उसके अज्ञानता को एड्रेस करें, तो अज्ञानता को एड्रेस करते ही उसके अंदर की जो इस प्रकार की प्रवृत्ति है, इस प्रकार की जो गतिविधियां वो करता है, वो समाप्त हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि वसुदेव जी का कितना बड़ा हृदय है, माता देवकी का कितना बड़ा हृदय है। ऐसे लोग महात्मा हो, तो महात्मा का वास्तविक मतलब क्या है, वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, है ना। गलती कर दी, चला गलती, उन्होंने छोटी मोटी गलती नहीं की थी। छह छह बच्चों को मारना आसान नहीं होता, हमारा कोई एक बच्चे को हाथ लगा दे, उंगली लगा दे, कोई थप्पड़ मार दे तो क्या होता है, कितना गुस्सा करते, तूने मेरे बच्चे को टच कैसे कर लिया, वो कर लिया, है कि नहीं, लड़ाई हो जाती है। बच्चों के ऊपर लड़ाई देखी है आपने कभी, कितने लोगों ने देखी है कि बच्चों के कारण लड़ाई होते हुए। तो यहां तो क्या हो रहा है, उनके बच्चों को तो मार दिया उन्होंने, छह छह बच्चों को मार दिया, लेकिन फिर भी यह उनको माफ कर रहे हैं। क्या देख करके, कि इसने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, बस अब उसको पीछे नहीं लग गए कि नहीं ऐसे कैसे मान ले, मेरे बच्चे को वापस लाओ, लो तुम्हें तो सजा मिलेगी, तुम्हें तो ऐसा होना ही पड़ेगा, तुम्हें तो ना, इस प्रकार से नहीं। अब उसने गलती एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, तो उन्होंने माफ कर दिया। तो ये ब्रॉड माइंडेड जो महात्मा होते हैं उनका ये लक्षण होता है, कि महान आत्मा उनकी जो उनका जो हृदय होता है वो मैग्नानिमस होता है, बहुत बड़ा होता है। एक गुण उनमें होता है जिसको हम कहते हैं शांति, अक्ष जो क्षत्रिय वाला अक्ष होता है वो वाला अक्ष शांति, है ना। शांति का मतलब ही है क्षमाशील, वो फॉरगिविंग नेचर के होते हैं और भूल भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि माफ कर दिया जन्म जन्मों तक याद रखे हुए कि तुमने ऐसा मुझे ऐसा किया था। तो यहाँ पर वसुदेव भी और देवकी भी दोनों भी उनको ठीक है, अच्छी बात है, तुमने गलती को एक्सेप्ट कर लिया है, प्रायश्चित कर रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आ चुका है। तो इस श्लोक पर हम यही देखते हैं। और भगवान भी भगवद गीता में बहुत सारे श्लोक कहते हैं, बहुत फेमस श्लोक, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सा। अगर कोई भगवान की भक्ति में लगा है और उसके अंदर हम बहुत सारे दुर्गुण भी दिखाई देते हैं, अपी चेत से दुराचार, दुराचार में भी लगा हुआ है, लेकिन वह माला जब करता है भगवान की भक्ति में लगा है, तो कृष्ण क्या बोलते हैं उसको, वो क्या है, वो साधु है। अभी थोड़े समय के लिए दिख रहा है कि इसमें हमें गलती है, है ना, लेकिन वो माला जब करते करते, भक्तों का संग करते करते, प्रसाद खाते खाते, भागवत कथा सुनते सुनते, वो अपना आप एक दिन बदल जाएगा। इसलिए उसको साधु रेव समन्तव्य, उसको क्या समझना है, साधु समझना है, उसकी गलतियों को नहीं देखना। जैसे कि भगवान का विजन है, उसी प्रकार से जो ब्रॉड माइंडेड भक्त होते हैं वो उसी विजन से लेकर के चलते हैं, लेकिन जो नवसिखिया भक्त होते हैं वो क्या देखते हैं, देखो ये माला भी जप करता है और साथ में गंदे काम भी करता है, है कि नहीं। तो वही ग्लास अगर आधा खाली आधा भरा हुआ है ना, तो जो ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति वो क्या देखेगा कि देखो ग्लास में पानी है, और जो पेसिमिस्टिक व्यक्ति है वो क्या देखेगा, देखो ग्लास खाली है, ग्लास वही है, पानी वही है, लेकिन देखने का नजरिया है। श्री श्री राधा राधे कर्मण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताई की, ये विजन होता है। तो भगवान का विजन भी बहुत ब्रॉड है। एक चूहे ने गलती से उनको परिक्रमा कर लिया, जलते हुए परिक्रमा कर लिया, चूहे ने थोड़ी भक्ति भाव से परिक्रमा किया, लेकिन कृष्ण ने क्या देखा, इसने क्या किया है, दीप दान दिया है, कार्तिक के महीने में इसने मुझे दीप दान दिया, तो उसके दीप दान के अफेक्ट को उन्होंने ग्रहण कर लिया। पोता तो मारने के लिए आई थी उनको, ऐसा थोड़ी है लाला दूध पी लो तुम मेरा बच्चा है, ऐसा वात्सल्य भाव से थोड़ी आई थी, ईर्ष्या भाव से आई थी, मारने के भाव से आई थी, लेकिन कृष्ण ने क्या देखा कि मुझे दूध पिलाने के लिए आई है। तो कृष्ण का विजन हम सब के लिए क्या है, बहुत ही ब्रॉड है। उसी प्रकार से जो उनके महान भक्त होते हैं उनका विजन ही बहुत ब्रॉड होता है। प्रभुपाद जी भी जब विदेशों में प्रचार करने गए तो इसी भावना से गए, है ना। विदेश जाना, हिप्पीज के बीच में जाना, प्रचार करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उनको विश्वास था किस पर? भागवत के संदेश पर, हरि नाम के ऊपर। तो गलतियां भी करते थे तो बोलते कोई बात नहीं, ये इनकी एक चीज क्या है कि भगवान के नाम को बहुत ही अच्छे से ले रहे हैं, कीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गीता के संदेश को सुन रहे हैं, प्रसाद का सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनके अंदर बदलाव आएगा ही आएगा। वही हम देखते हैं, जनरली लोग समझ क्या देखेंगे, हिप्पी हैं ये, गंदे लोग हैं ऐसे इसको, है ना। इनके अंदर से जब वो आते थे हिप्पीज इंडिया में तो भारतीय लोग बहुत उनको कंडेम करते थे, ये स्वामी जी क्या कर रहे हैं, है ना, हमारी संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे मलेच्छों को ये देखो क्या बना रहे हो, ब्राह्मण बना रहे हैं। अब बहुत उनको कमेंट्स पास करते थे, सरकास्टिक बोलते थे। तो एक बार भागवतम क्लास में कुछ इंडियन से बैठे हुए थे और कुछ हिप्पीज भी थे, तो क्लास के टाइम में वो सो रहे थे, समय नींद आ ही जाती कई बार, झपकी मारने लगते। तो एक ने बोला, आपके कथा में देखिए ये जो बाहर से विदेशी लोग आए देखो सो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला, अब देखने का तरीका देखिए, एक बोलता हाँ देखो सो रहे हैं, मैं इनको इतना समझाता हूँ, इनका बोलता हूँ इन फिर भी ये सोते रहते हैं, ऐसे बोल सकते थे। तो उन्होंने क्या बोला कि देखो ये सोते सोते भी इतना कुछ कर रहे हैं, है ना, पूरे विश्व भर में क्रांति ला दी, है ना, सोते सोते इनके प्रयास आप देखिए, अगर ये जाग जाएंगे तो क्या करेंगे, आप तो जागते जागते सुन रहे हो क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार से हर एक चीज में अच्छे गुणों को देखना। यहाँ कंस जो है वह इतना उसका अपराध किया, पाप किया, लेकिन वसुदेव क्या देख रहे हैं कि इसने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया है, ये अच्छी बात है। तो ये बड़ा विजन होता है, तो इसलिए ये प्रायश्चित करना भी आवश्यक है। जहाँ थोड़ा सा भी लग रहा है कि कंस जो है वो प्रायश्चित कर रहा है, तो ये प्रायश्चित भी, जैसे गलती हम करते हैं, हम सबका नेचुरल टेंडेंसी है गलत करना, तो एर इज ह्यूमन, है ना, बद्ध जीव जो है वो गलतियां करेगा ही करेगा, लेकिन गलतियों को सुधारने का क्या तरीका है, है ना। तो गलतियों को सुधारने का हमारे शास्त्र में कहते हैं दो चीजें होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य। जो आंतरिक फीलिंग है जिसको हम बोलते हैं अच्छा नहीं लगता है, या गिल्टी वाली फीलिंग है, या अपने आप को बदलना चाहते हैं, है ना, जिसको कहा जाता है पश्चाताप, है ना, जो अंतर से हमको कभी फील होता है। और दूसरा होता है प्रायश्चित। प्रायश्चित जो है वो एक्सटर्नल एक्टिविटी है, ना? तो ये दो शब्द है, ये अलग अलग शब्द है, ना। जनरली कई बार प्रायश्चित को पश्चाताप को लोग एक ही मान बैठते हैं, लेकिन जो अलग अलग चीज है। प्रायश्चित मीन्स हमने उसको रेक्टिफाई करने के लिए या दंड के रूप में कुछ हमने किया, सजा एक्टिविटी किया। प्रायश्चित मीन्स इंटरनली हमने अपने आप को बदलने का प्रयास किया। जैसे गवर्नमेंट जो आजकल ट्रैफिक के ऊपर बहुत सारे पॉलिसीज बना रही है ना, अगर आप सीट बेल्ट लगा के नहीं चलोगे ना, तो उसका प्रायश्चित क्या है, कितने का चलाना है सीट बेल्ट, कितने का चलाना है, 1,000। माता जी ने 5,000 दिया लग रहा है। और मान लीजिए ट्रैफिक पुलिस वाले ये 1,000 रुपए ना ले चलाना, है ना, बोले अगले बार से मत करना, अगले बार से मत करना, वो फील भी करें कि हाँ मुझसे गलती होगी, गलती हो आगे से नहीं करना, इन 1,000 रुपए ना दे तो फिर क्या होगा, अगली बार क्या होगा, वो फिर से गलती करेगा। तो इसलिए ये चलान काटना जरूरी है या नहीं है, ये सजा देना जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है। तो कुछ दंड आवश्यक है तभी वो गलती ठीक होता है। जब तक आप दंड नहीं दोगे तब तक गलती ठीक नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे पहले के समय में स्कूलों में बहुत दंड दिया जाता था, कितनों ने दंड लिया है बचपन में, कितने मुर्गे बने थे, कभी बने, बहुत भयंकर भयंकर दंड देते थे, मुर्गा बना देते थे, क्लास के छत पे चढ़ा देते थे, है ना, बहुत भयंकर। गांव में तो और भयंकर करते हैं, वो पेड़ पे चढ़ा देंगे और बांध देंगे, और जो चींटियां होती है लाल वाली चींटी, वो छोड़ देते थे इसको काटने के लिए। तो ऐसा ऐसा ढंड देते थे वहां, पहले करते थे। इवन आप देखेंगे सुबुद्धि राय और नवाब हुसैन शाह, है ना, तो सुबुद्धि राय ने दंड दिया था उसको, वो टीचर थे। तो नवाब हुसैन शाह का क्या हुआ था, पीठ में जब छरी मारी थी या कोड़े जो भी मारे होंगे उससे निशान पड़ गया था। तो पहले ऐसे दंड दिया जाता था ताकि वो गलती देख करके ही वो क्या करे, भैया अब ये नहीं करना, अब नहीं करना। लेकिन अभी के समय आप देखो, बोले इतनी इतनी बड़ी गलती कर जाते हैं लेकिन कोई दंड नहीं मिलता है, तो इसलिए गलतियां क्या होती, लोग बारम्बार वो गलतियां करते रहते हैं, न कोई ऐसी सजा नहीं मिलती है। तो इसलिए दंड भी आवश्यक है और पश्चाताप भी आवश्यक है, प्रायश्चित भी आवश्यक है, पश्चाताप भी आवश्यक है, कि अंदर से एक फीलिंग आना कि मुझसे गलती हुई और आगे से मैं गलती नहीं करूंगा। तो इसलिए यहां पर ये चीजें थोड़ी सी भी दिख रही है कंस में, लेकिन आगे जाके वो फिर बदल जाएगा। अभी प्रायश्चित वो कर रहा है, पश्चाताप की भावना तो है उसके अंदर। और इसके श्लोक में खास करके कुछ शब्द हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि एवं एतत् महाभागा यथावदसी देहिनाम अज्ञान प्रभवा, है ना, ये अज्ञानवश, है ना। तो अज्ञानवश के कारण, अज्ञानता के कारण ही लोग अपने आप को क्या समझते हैं, शरीर मानते हैं, देह मानते हैं, और अज्ञानता के कारण ही नाना प्रकार की पापमय गतिविधियां होती हैं। आप देखेंगे जब अंधेरा होता है तभी हम ज्यादा गलती करते हैं, सबसे ज्यादा गलतियां कब होती है, अंधेरे में या दिन के उजाले में। ठेके कब एक्टिव होते हैं, मतलब रेस्टोरेंट बियर बार ये सब का हुक्का कब एक्टिव होते हैं, दिन में आप देखेंगे होता है ये सब नहीं, कब होता है, शाम में। तो जब अंधकार होता है तब पाप करना नेचुरल एक है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है ना, तो किसी भी चीज की फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है तो अच्छे से होने लगता है ना। तो अगर बाहर भी अंधकार है अंदर भी अंधकार है तो बहुत तेजी से व्यक्ति पाप में लग जाता है। तो इसीलिए इस अज्ञानता को निकालना यह आवश्यक, तभी हम पाप से बचते हैं। तो अज्ञानता, लेकिन हमारे आजकल स्कूल में कॉलेजेस में कहीं भी आप देखेंगे इस प्रकार के ज्ञान की बातें बतलाई जाती हैं क्या, कहीं भी भगवत गीता के ऊपर क्लास होती है, भागवत के ऊपर क्लास होती है, नहीं। तो ये जो स्कूल की जो पढ़ाइयां हैं, आजकल के जो स्कूल के जो टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़ते हैं, वो कहीं भी हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता है, वो भौतिक ज्ञान देता है। और भौतिक ज्ञान बढ़ने के कारण अभी इतने ज्यादा ज्ञानता फैल रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, विद्यार विलासे कटाइनो काला, है ना। और इससे होता क्या है कि मोह जन्मिया अनित्य संसार है, कि इस जो अनित्य संसार है, ये टेम्परेरी संसार है, इसके प्रति क्या हो जाता है, एक मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह क्या लगता है कि यही सब कुछ है, सब कुछ यही है, अपना शरीर ही सब कुछ है, अपना परिवार ही सब कुछ है, इसके आगे का वो सोच ही नहीं पाता है, है ना। मान लीजिए सामने बहुत अंधकार है, घोर डार्कनेस है, तो आपको आगे कुछ दिखलाई देता है क्या, कुछ दिखलाई देगा, नहीं दिखलाई देगा। लेकिन लाइट जल रहा है तो आपको दूर दूर तक चीजें दिखलाई दे देती है। तो वैसे ही अज्ञानता के कारण लोगों का आध्यात्मिकता वो क्या है, वो शरीर किस लिए उनको प्राप्त हुआ है, ये आत्मा क्या है, भगवान क्या है, भगवत तत्व क्या है, इसके विषय में उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो अनित्य संसार के प्रति जो मोह उत्पन्न होता है वो किसके कारण है, इस अज्ञानता का। तो सो कॉल्ड जो मटेरियल साइंस है वो इस चीज को और हमें क्या करता है, बढ़ावा देता है। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, वहां भी बच्चे सुसाइड करते हैं। ये क्या मतलब, समझ नहीं आता ना। इंटेलिजेंट क्लास ऑफ बॉयज हैं, अच्छे अच्छे पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो तीसरी मंजिल से छलांग लगा रहे हैं, वो आपके पंखे में गर्दन में ऐसा लगा रहे हैं। ये कौन सी पढ़ाई है जो बच्चों को क्या सिखला रही है? सुसाइड करने को। ये कौन सी पढ़ाई है जिसके कारण बच्चे अब क्या हो रहे हैं, और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो वो एक कॉलेज में गए है ना, तभी वहां को एक खबर आई कि एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बोले तुम्हारा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है और तुम्हारी पढ़ाई के कारण देखो क्या हो रहा है, बच्चे छलांग लगा करके सुसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट तुमने खोले हुए हैं लेकिन आत्मा का डिपार्टमेंट किधर है? कहाँ वो डिपार्टमेंट है जो कि बतलाए कि एक मृत शरीर में और एक जीवित शरीर में क्या अंतर है? तो जब तक आत्म तत्व के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, यह ज्ञानता ऐसी बढ़ती चली जाएगी। लोगों के अंदर किसी प्रकार की संतुष्टि और एक प्रकार का वर्दीनेस ये नहीं आएगा जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं दिया जाएगा। अच्छे से अच्छे व्यक्ति पीएचडी कर लेंगे, एमटेक बीटेक सब कुछ कर लेंगे, लेकिन उसको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं है वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकता है। वही हम देख रहे हैं आजकल के समाज में, लोग पढ़ा लिखा रहे हैं, खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या करते हैं जी, क्यों इतना पैसा कमाते हैं जी, तो मैं अपने बच्चों को कहाँ भेजूंगा, MIT भेजूंगा या हार्वर्ड भेजूंगा या ऑक्सफोर्ड भेजूंगा या ये बहुत बड़े बड़े सपने लगा करके। और सारे स्कूल यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे सरस्वती माता की वो रख देते हैं, एक मूर्ति लगा के रख देते हैं, है ना। और सरस्वती माता ये थोड़ी पढ़ाती है, सरस्वती माता का तो जो ज्ञान है वेदों का ज्ञान है, माता सरस्वती वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, गीता का ज्ञान वो नहीं बतलाएंगे, बस एक रूपक के रूप में वो रख देते हैं किस माता सरस्वती। तो इसके कारण हमारे बच्चे पढ़ तो रहे हैं, टॉप भी कर रहे हैं, है ना। एक लड़का था IIT में था, IIT दिल्ली में, तो उसने वो फर्स्ट ईयर में ही था, उसने भी सुसाइड कर लिया। तो उसने सुसाइड नोट में क्या लिखा था कि आज फिजिक्स के टीचर ने मुझे पूरी क्लास को एक प्रॉब्लम दिया सॉल्व करने के लिए, डेली वो सबसे पहले सॉल्व करके वो दिखलाता था, लेकिन आज क्या हुआ, किसी और बच्चे ने दिखला दिया, बस 2 मिनट पहले दिखला दिया। उसको इतना बुरा लगा, इतना मुझसे पहले इसने दिखा दिया, मुझसे आगे कोई निकल रहा है तो मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये जो अविद्या है ये कंपटीशन सिखाता है, ईर्ष्या दिखाता है, द्वेष सिखाता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कि तुम्हारे आगे कोई जा रहा है उसका गर्दन काट दो। आप देखिए गुड़गांव में, नोएडा में जितने भी कॉरपोरेट्स हैं वहाँ क्या हाल है, कोई संतुष्टि से कोई भाग भाग के तो जाते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे ड्राइविंग करके वहां पहुंच तो जाते हैं, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेट होकर के, परेशान होकर के, देयर लॉट्स ऑफ सुसाइड्स, है ना। तो दिल्ली एक रेप कैपिटल तो बना हुआ है, अब सुसाइड कैपिटल भी बनने जा रहे हैं, हरी बोल। तो भाई ऐसा क्यों है? ये अज्ञानता के कारण है। लोग पढ़ के आप देखेंगे, हम अपने बच्चों को ट्यूशन लगाए जी, किसका किसका, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, कभी हमने ने गीता के लिए हमने ट्यूशन लगाया नहीं है? आपने, आप में से कितनों ने अपने बच्चों को गीता के लिए ट्यूशन लगाया है? हमारा बच्चा गीता सीख ले जी, भागवत सीख ले जी, एक भी ट्यूशन नहीं लगाया जाता है। अरे हमारा बच्चा अल्फा बीटा थीटा गामा वगैरह सब सीख ले, है ना। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक नाविक था ना, वो जा रहा था, उस पर एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, MIT से MTech किया हुआ, MS किया हुआ, तो वो कह रहा है बोटमैन को, है ना, क्या तुम जानते हो अल्फा बीटा थीटा? बोले नहीं नहीं जानता। तो तुम्हारा जीवन जो है 40% बेकार है। आवाज कम आ रही है? तो कह रहे तुम जानते हो अल्फा बीटा थीटा गामा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब जानते हो? बोला नहीं जानता हूं। तो कहते तुम्हारा जीवन जो है 50% बेकार हो गया। बोले तुम ये सब जानते हो, अंग्रेजी कुछ अक्षर बता, ये सब जानते हो? बोले नहीं, तुम्हारा 80% जीवन जो है बेकार हो गया। फिर थोड़े समय में क्या हुआ, वहां पर आंधी तूफान आया, बाढ़ की स्थिति आ गई, तो बोट गिरने लगा। तो नाविक ने बोला उसको कि तुम्हें तैरना आता है? बोलता नहीं। कह रहे तुम्हारा 100% जीवन बेकार हो गया। तो वही हाल है, लोग पढ़ लिख लेंगे खूब लेकिन गीता का ज्ञान को जो नहीं समझता है उसका 100% जीवन बेकार है। क्यों? क्योंकि यह जो शिक्षा है वो शिक्षा नहीं अशिक्षा है, यह जो विद्या है वो विद्या नहीं अविद्या है, अज्ञानता है। इसलिए खुद भी इस ज्ञान के शरण में हम जाएं और अपने बच्चों को भी यह ज्ञान दे। समानतया लोग क्या समझते हैं, ये गीता का ज्ञान भागवत का ज्ञान कब देना है जी? अंत समय में, मरते समय में, जब मर ही जाएगा, पढ़ के उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, क्या पढ़ेगा क्या सुनेगा। तो इसलिए अज्ञानता को हटाने के लिए ना भगवान बहुत अच्छा, आप देखेंगे भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें 9वें 10वें 11वें बहुत, जिसको चतुर्श्लोक की भगवद गीता कहते हैं, है ना। तो इसमें पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कि अज्ञानता कैसे हटता है, है ना। तो 8वें श्लोक में कहता, हम सर्वस्व प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बोधा भाव समन्विता, कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और मेरे हृदय में पूरी तरह से मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो पहली चीज है कि भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा, ये फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि ज्ञान के स्रोत जो है वो कौन है? वो भगवान है। भगवान ही वेदविद है, भगवान ने ही वेदों की रचना की है ना, भगवान ने ही वेदों का ज्ञान दिया है ब्रह्मा जी को। तो ज्ञान के जो स्रोत है वो कौन है? साक्षात भगवान। तो ज्ञान के स्रोत और भगवान समझने का क्या मतलब है? यह चीज को समझना है कि जो भी चीज मुझे दिखाई देती है वो हर एक चीज कहाँ से आ रही है? वो भगवान से आ रही है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि भगवान से विलग है। जिन चीजों को हम भगवान से विलग समझते हैं वही अज्ञानता का कारण है, वही बड़ा दोष है। हम समझ जाते हैं कि ठीक है सब कुछ भगवान का है, लेकिन ये जो घर है वो मेरा है, ये जो शरीर है वो मेरा है, ये जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो किसका है? मेरा, बस यही है, बाकी सब भगवान का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है वो किसका है? वो मेरा है ना। तो ये नहीं है, वो क्या रहे? हर एक चीज, मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा जो भी जितना भी है, सब कुछ कृष्ण का है। तो ये प्रथम श्रद्धा है। उसके बाद दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। ये दूसरी चीज है, एक तो भगवत ज्ञान और उसके बाद भगवत चर्चा, भगवत चर्चा भी आवश्यक है, डिस्कशंस बहुत आवश्यक है। आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में कितने सारे डिस्कशंस हैं, है ना। परीक्षित महाराज भी अपने आप में भक्त थे, सुखदेव गोस्वामी भी अपने आप में भक्त थे और इतने सारे ऋषि मुनि आए थे वो भी अपने आप में भक्त थे, कोई किसी से कम था क्या वहां पर? नारद जी थे, व्यासदेव जी थे, सब अपने आप में दिग्गज भक्त सब पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पहुंच करके वो कर क्या रहे हैं? डिस्कशंस कर रहे हैं। ये डिस्कशंस आवश्यक है। कई बार समझते हैं ठीक है हमने प्रभु जी हमें तो पता ही है सब कुछ, है ना, डिस्कशन करने की क्या जरूरत है? नहीं, डिस्कशन करने से ही हमारा पोषण होता है ना। भक्ति जो है वो परस्पर होता है, परस्पर डिस्कशंस, संकीर्तन। एकाकी आमार नहीं पाए बल, अकेले हमें शक्ति नहीं है और अकेले भक्ति करते करते हम अकेले कर भी नहीं सकते भक्ति, व्यक्ति धीरे 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 चला ही जाता है जो समझता है कि मैं अकेला भक्ति कर लूंगा। तो भक्तों के लिए अकेला ये ठीक नहीं है ना, ही शुड हैव सम डिस्कशन, उसको कुछ चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशंस होना चाहिए, जो भी हम पढ़ते हैं समझते हैं सुनते हैं। तो इसको ये दूसरा स्टेप है, डिस्कशंस करना। अगर ऐसा डिस्कशंस करते हैं, ऐसी हम चर्चाएं करते हैं तो उसका क्या लाभ होता है? हमारी संतुष्टि होती है, हमारा पोषण होता है, हमें आनंद की अनुभूति होती है ना। यह डिस्कशन ना होने के कारण ही हम देखते हैं कि भक्ति में तो लगे हैं 10 साल हो गए, 15 साल हैं, लेकिन फिर भी वो चिड़चिड़ भावना होती है, चिड़चिड़ समझते हैं, चिक 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 चिक, थोड़ी थोड़ी टची हो जाते हैं, टची समझते हैं, कितने लोगों ने छुई मुई देखा, छुई मुई सबने देखा, टच मी नॉट। तो छुई मुई को आप क्या करते हो, ऐसे छू देते हो तो क्या हो जाता है, एकदम ऐसे हो जाता है। तो आप कई ऐसे भक्तों को भी देखेंगे जो छुई मुई हो जाते हैं, है ना, थोड़ा सा टच करते ऐसे कैसे हो गया, फिर कभी समझ आ रही, आप तो इतने पुराने भक्त हैं प्रभु जी, आप कैसे छुई मुई बन गए। आपको तो क्या बनना चाहिए था, बड़गद का पेड़, लेकिन आप क्या बन गए, छुई मुई, है ना। तो आप में से कितने लोग छुई मुई बनना चाहते हैं, कितने लोग बड़गद का पेड़ बनना चाहते हैं, हाँ। तो बड़गद का पेड़ आप कब बनोगे, जब चर्चा करोगे। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, हम डिस्कशंस करते हैं, चर्चाएं करते हैं शास्त्रों के ऊपर, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। प्रभुपाद जी के परपट जो है वो खजाने के जैसा है, जितना आप निकालते जाओगे उतना निकलता जाएगा, ये ऐसी बात होती है। अब वही लेक्चर 10 साल पहले आपने सुना था, आपको अलग समझ में आएगा, 10 साल बाद आपको वही लेक्चर अलग समझ में आएगा। तो ये खासियत होती है, वही भगवद गीता 10 साल पहले जो आपने पढ़ी है उसका अलग ही वो था, अब 10 साल बाद पढ़ो उसका अलग ही वो आएगा ना। तो ये चीजें जो गहरी होती है, ऊपर सरफेस की नहीं होती है, तो ये कैसे निकल के आता है, वो डिस्कशंस करने से। इसलिए कृष्ण खुद भी कहते हैं आप डिस्कशन करो, मत चिता मत गत प्राणा, किसके साथ करो, भक्तों के साथ करो। लेकिन समानता क्या होता है कि नए लोगों को तो हम प्रचार करते हैं बहुत, है ना, आओ जी आओ, है ना, उसमें खूब डिस्कशन, लेकिन जो भक्त हैं भक्त के समाज में कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, ये गलत है। कृष्ण बोलते हैं क्या, किसके बीच में डिस्कशन करना है, भक्तों के बीच। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परश्रम कथयंत माम नित्य शांति च रमंती च, यही आपको संतुष्टि और आनंद प्रदान करेगा। फिर ऐसा करने से तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, कि ऐसा करने से हम कहते हैं ना 24 घंटे हम कैसे कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं, है ना, हम जप कर लेते हैं, क्लास सुन लेते हैं, बाकी टाइम हम कॉन्शियसनेस नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऐसे हम डिस्कशंस अगर करते हैं तो धीरे धीरे हम हर एक चीज में युक्त होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, किससे, कृष्ण के साथ, क्योंकि हर एक चीज जो है किससे जुड़ी हुई है, कृष्ण से जुड़ी हुई है। गीता भगवान कहते हैं कि जैसे माला पिरोया गया है ऐसे, तो उसी प्रकार से पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो मुझसे ही सब कुछ चल पा रहा है। तो ऐसा युक्त व्यक्ति हर एक चीज को कृष्ण किससे जोड़ना शुरू कर देता है, कृष्ण के साथ, और फिर उसको समझने की बुद्धि, आप बोलते मेरे पास तो बुद्धि नहीं है प्रभु जी, कैसे समझा, ये बुद्धि फिर कौन देगा, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, कृष्ण स्वयं बुद्धि देते हैं। अभी भी जो बुद्धि दिया वो किसने दिया है, भगवान ने, अब आगे भी बुद्धि देंगे कि नहीं देंगे, कितनों को बुद्धि चाहिए, और सबको बुद्धि चाहिए, तो कैसे मिलेगा बुद्धि, कृष्ण देंगे बुद्धि, कैसे देंगे, जब सतत युक्त होंगे और प्रीति पूर्वक उनका भजन करेंगे तो कृष्ण खुद बुद्धि देते हैं। हमारे पास बुद्धि अभी भी जो है वो भी कृष्ण ने दिया है, और बुद्धि चाहिए वो भी कौन देंगे, वो भी कृष्ण ही देंगे। और फिर अंतिम चीज हो जाएगी हमारे साथ क्या, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमः नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः, कि मैं उन पर विशेष कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूं। तो स्वयं भगवान ज्ञान का दीप जला देते हैं, कहां पर, हृदय में, ना, वो लैंप को जलाने वाले कौन है, वो कृष्ण ही है। और जिस व्यक्ति का हृदय इस प्रकार से प्रकाशवान हो जाता है तो उसकी अज्ञानता जो है वो समाप्त हो जाती है, तब उसकी जो देहात्म बुद्धि है वो समाप्त हो जाती है ना। तो इसलिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस भगवान ने बतलाया कि कैसे उस अज्ञानता को अपने हृदय से समाप्त कर सकते हैं, उस ज्ञान के दीप को प्रकाशित कर सकते हैं, तभी हम इस देहात्म चेतना से ऊपर उठ सकते हैं ना? और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर पंडिता सम दर्शना,
है ना, ये वाली स्थिति आ जाती, पंडिता समदर्शना है ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चाहे वो सोपाके चा पंडिता समदर्शिना, कि चाहे वो ब्राह्मण को देखता है, चाहे हाथी को देखता है, चाहे कुत्ते को देखता है या चंडाल को देखता है, उसमें क्या देखता है, उसमें वो भगवान का अंश को देखता है ना। स्थावरा जंग में देखे ना देखे तार मूर्ति, स्थावर में जंग में वो क्या देखता है, भगवान की, भगवान का ही रूप, उनकी इष्ट स्फूर्ति स्वाभाविक रूप से होती है। तो यह चेतना है। तो प्रभुपाद जी जब अपनी अंतिम लीला कर रहे हैं, अब कल ही उनका तिरुभाव दिवस हमने इतने धूमधाम से मनाया है, तो अंत समय में आप देखेंगे उनका शरीर पूर्ण रूप से फ्रेजाइल हो गया था एकदम, लेकिन कोई डॉक्टर आ रहा है उनको ऐसे छू रहा है, आप देखेंगे कि अगर हमारा हड्डी और स्किन रह जाए और कोई फ्लैश ना रहे तो बहुत पेन होता है। वो इन डॉक्टर से ही पूछ रहे हैं कि आप ठीक, डॉक्टर कह रहे आप ठीक हो, वो कह रहे आप ठीक हो, उनसे वो पूछ रहे, वो कह रहे एक शिष्य को कह रहे कि मेरा शरीर आपको दिख सकता है कि डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं, आई एम एक्सपीरियंसिंग स्पिरिचुअल एक्सटेसिस, मैं आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। और इस स्थिति को क्या कहा जाता है, ब्रह्मभूत स्थिति कहा जाता है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांचती, वो स्थिति है। लेकिन जो भौतिकवादी हैं, जो भौतिक ज्ञान पर विश्वास करते हैं, वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। यस्य आत्मा बुद्धि कुनपे त्रिधातुके स्वधि कलत्रादिषु भौमेच्छधि यत्र तीर्थ बुद्धि सलीन न करहिच जनेषु भगेषु सैव गोखरः। वो शरीर को ही सब कुछ मानते, समझते कि सब कुछ कहाँ से आया है, इसी शरीर से ही आया है ना? और अपनी पत्नी को, अपने परिवार, अपने जिस जगह पे जन्म लिया है उससे बड़ा अटैचमेंट होता है ना। जैसे कोई पंजाबी है तो पंजाबी भाषा जैसे बोले पंजाबी लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, है ना। कोई बंगाली है तो बांग्ला भाषा जैसे बोले मैं भी बंगाल से हूँ, है कि नहीं, तो उस क्षेत्र को समझता है कि ये बड़ा महान है क्योंकि ये मेरा जन्म स्थान है, मैं पंजाब का पुत्र हूँ या मैं बिहार का पुत्र हूँ, ऐसा तो मेरा बड़ा महान है। तो उसी को ही क्या समझते हैं, सब कुछ है। और तीर्थ को क्या समझते हैं कि तीर्थ का मतलब है जी जाओ वहां पर डुबकी लगा के आ जाओ, है ना। डुबकी लगा लिया बोले तीर्थ गए थे, हाँ गए थे, स्नान के, हाँ स्नान बड़ा अच्छा स्नान हुआ। तो तीर्थ को क्या समझ मान बैठते हैं, केवल एक वाटर बॉडी, स्नान करके आ गए बस हो गया। और जो जने सौभाग्यसु है, जो स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सन है, उनके साथ उनका कोई तालमेल नहीं रहता है, वो भौतिकवादियों के बीच में ही कंफर्टेबल होते हैं, भक्तों के आने के बाद वो अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो किसके समान है, गोखरा गधे के समान है। ये कौन कह रहे हैं, पता है श्लोक कौन कह रहे हैं, ये भगवान कह रहे हैं, कृष्ण खुद कह रहे हैं। गधे लोग, गधे लोगों की क्या पहचान है कि तीर्थ को क्या समझते हैं, डुबकी लगा के आ जाओ पानी में, यहाँ कुंड में स्नान किया, नदी में स्नान किया, बस हाँ जी अच्छा हो गया। अपना परिवार को, अपने घर के, अपने जन्म स्थान को समझते हैं बड़ा महान है, सबसे अच्छा है, द टॉप मोस्ट। शरीर को ही जो सब कुछ मानते हैं, सैव गोखरा। इसलिए जब हम भगवान के शरणागत होकर के अज्ञानता को समाप्त करने का प्रयास करते हैं शास्त्रों के आधार पर, क्योंकि शास्त्र ही वो सूर्य है, जैसे भागवत में कहा गया है कि कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान दिभी सह कलो नष्ट दिशाम एष पुराण अर्को अधुनोदिता, कि भगवान जब इस धरा धाम से चले गए तो उनके साथ साथ धर्म भी और ज्ञान भी चला गया, लेकिन भागवत रूपी सूर्य के रूप में वो फिर से प्रकट हुए। तो कलयुग का जो अंधकार है, इस कलयुग के अंधकार को समाप्त करने के लिए हमें किसकी सहायता चाहिए, भागवत ग्रंथ। ये जो किसके समान है, सूर्य के समान है। तो जहां से सूर्य का उदय हो जाता है वैसे अंधकार समाप्त हो जाता है ना। इसलिए कृष्ण है सूर्य सम माया अंधकार, जहां है कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, कि कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है और माया अंधकार है। जहां पर साक्षात कृष्ण होते हैं वहां पर किसी प्रकार का माया का अंधकार नहीं होता। तो भागवत जो है दो प्रकार के होते हैं, पुस्तक भागवत और एक व्यक्ति भागवत। तो पुस्तक भागवत को भी अच्छे से पढ़ना है, इसको समझने का प्रयास करना है। उसके साथ साथ जो व्यक्ति भागवत है, जो इन्हीं भागवत को अपने जीवन में उतारते हैं, उनका भी हमें संग करना है। तो ये दोनों बहुत आवश्यक है। तो पुस्तक भागवत का संग करेंगे, व्यक्ति भागवत का संग नहीं करेंगे तो समझ ही नहीं, क्लियर ही नहीं होगा, उदाहरण ही नहीं स्पष्ट होगा। तो इसलिए दोनों आवश्यक है, पुस्तक भागवत भी और व्यक्ति भागवत भी। तो उससे जाकर के हमारे अंदर का जो अज्ञानता है, जो डार्कनेस है, वो समाप्त होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो समय हो चुका है, किसी कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है किसी की? बोले इसका प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अगर ब्रह्मा जी मतलब इतने ज्ञानी हैं, सब कुछ ब्रह्मा जी ने आगे बोला है, तब तक हमारे पर पहुंचा है, तो सरस्वती माता की पूजा क्यों की जाती है स्कूल में?
सरस्वती माता जी की
पूजा क्यों की जाती है? तो ब्रह्मा जी की जानी चाहिए ना। और ज्यादातर जगह हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम ही की जाती है, रेयर कहीं कहीं देखी जाती है।
तो आप कीजिए, किस तरह का
प्रभु जी आप बताइए ना, फिर क्यों होता है?
ब्रह्मा जी ने थोड़ी मना किया है। तो ब्रह्मा जी को एक शाप लगा हुआ है ना, यज्ञ हो रहा था तो उनकी एक पत्नी है सावित्री है ना, तो वो उपस्थित नहीं हो पाई थी उस यज्ञ में, थोड़ा वो लेट आई थी। तो लेट आई थी तो इन्होंने दूसरी पत्नी को बिठा दिया। तो यह देख करके सावित्री जी को गुस्सा आ गया है ना, तो इस कारण उन्होंने क्या किया, उनको शाप दे दिया कि तुम्हारी पूजा नहीं होगी। अब ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया था तो ब्राह्मणों को भी शाप दे दिया है कि तुम हमेशा दरिद्र रहोगे। इसलिए आप देखते हो ब्राह्मण हमेशा दरिद्र, भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से तो उन्नत रहते हैं, तो कुछ शाप लगे हुए हैं। इसीलिए पहले उनकी पूजा होती थी, लेकिन अभी भी एक मंदिर है पुष्कर में राजस्थान में, ब्रह्मा जी का मंदिर है इसीलिए। लेकिन लोग सरस्वती पूजा करते तो है, लेकिन उसमें करते क्या है? आपने मनाया कभी सरस्वती पूजा? कभी देख अच्छे से देखना, वो क्या करते हैं उसमें, चंदा इकट्ठा करेंगे, सरस्वती पूजा सरस्वती पूजा। अब पैसा इकट्ठा करके क्या करेंगे, शराब की बोतल खरीदेंगे, डिस्को चलाएंगे ना। सरस्वती पूजा का मतलब और अच्छे से पढ़ना, वेदों को पढ़ना, पढ़ेंगे कोई नहीं तो सारी किताबों को रख देंगे, पूजा करेंगे ना। मतलब इस दिन पढ़ना नहीं है ऐसा बोलते, इस दिन पढ़ना नहीं है, अब डांस करना है फिल्मी गानों में। ये सरस्वती, सरस्वती जी प्रसन्न होगी क्या उसके आगे, डांस देख देख के प्रसन्न होगी? नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं। हाँ जी, हाँ मनाते, वो तो सही तरीका, लेकिन ज्यादातर लोग गलत तरीके से मनाते हैं। सरस्वती पूजा का मतलब ही है विद्या की आराधना करना, विद्या आराधना, विद्या को हम जानेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, वो वास्तविक आराधना है। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।